اس پروگرام کے اخراجات جوائس مر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔
ہمارے دل میں کیا چلتا رہتا ہے؟ اوہ، یہ تو بڑی مصروف جگہ ہے۔ یہ کچھ ایسا ہے جس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں آپ اس پر غور کریں کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو بہت ساری خود کلامی۔ آپ خود سے خود کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں؟ اس طرف کچھ شرمندہ لوگ بیٹھے ہیں۔
میں بہت احمق ہوں، میں کبھی کچھ صحیح نہیں کر سکتی، میں بہت بے وقوف ہوں، موٹی ہوں، بھدی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔
اپنے بارے میں منفی باتیں مت کہیں۔ جب آپ ایسا بولتے ہیں تو آپ شیطان کے ساتھ متفق ہوتے ہیں۔ اب ذرا یہ سنیں، تمہیں کیا لگتا ہے خدا تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ پتا ہے بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خدا کے خیال ہمارے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ آپ ہر وقت خدا کے ذہن میں رہتے ہیں، خدا آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ سو آج صبح میں نے سوچا، اچھا جوائس، کیا لگتا ہے خدا تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ اور میں نے سوچا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھے پسند کرتا ہے، مجھ پر فخر کرتا ہے، میرا ایمان ہے وہ مجھ سے خوش ہے۔ اور آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بڑی خود پرست ہے، دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر معاملے میں ٹھیک ہوں، بلکہ یہ کہ خدا میرے دل کو دیکھتا ہے۔ اور شاید میں سارے کام ٹھیک نہیں کرتی، لیکن میں کرنا چاہتی ہوں اور میں نے اپنی زندگی اس کے لیے دی ہے۔ اور آپ کو اس سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا زیادہ تر آپ پر برہم رہتا ہے۔ جیسا بائبل میں لکھا ہے، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرتا ہے، وہ خوشی سے ناچتا ہے، وہ آپ سے اس قدر خوش ہے کہ آپ آج یہاں ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں اور ہوتے۔ وہ بہت خوش تھا جب آپ کل رات یہاں تھے، بجائے نشے میں کہیں اور پڑے ہونے کے۔ سوچیں، آپ کل رات شراب پی سکتے تھے اور صبح اٹھنے پر آپ اچھا محسوس نہ کرتے، شاید آپ بستر سے اتر ہی نہ پاتے، تو کیا پھر مزہ آتا؟ اس کے بجائے آپ یہاں آئے اور آپ کا وقت چرچ سروس میں واقعی اچھا گزرا۔ آپ ہنسے، آپ روئے، آپ نے کچھ سیکھا، آپ نے گایا، آپ اچھلے کودے۔ اور آپ کے تصورات، ان میں کیا ہوتا ہے؟ تصورات، اگر آپ کچھ تصور کرنے کی زحمت کرتے ہی ہیں تو اچھا ہی تصور کیوں نہ کیا جائے۔ آمین۔ میں تصور کر رہی ہوں کہ آج دوپہر مجھے ایک کال آئی ہے، 3-4 بجے کے قریب۔ ہمارے پاس آپ کی جائیداد سے متعلق ایک پیشکش ہے۔ واؤ، یسو، آپ کہیں، اچھا اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں توقع کروں گی کل کوئی کال آئے گی۔ میں شیطان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالنے والی، میں بہت سالوں تک ایسا کرتی رہی ہوں۔ جی ہاں، آپ کی خوشی اپنی من چاہی چیز کو پانے میں نہیں، بلکہ اس کو جاننے میں ہے جو آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، اور اس پر بھروسہ رکھنے میں ہے کہ اگر نہیں تو پھر آج کا دن اس کے لیے نہیں ہے۔ جو دن اس کے لیے ہے، اس دن وہ ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرے گا، اور وہ ہم سے صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں اور ایمان رکھیں اور توقع کرتے رہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے، آپ خوش رہتے ہیں جب تک آپ انتظار میں ہیں۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم سب کو انتظار کرنا ہے، چاہے اچھا لگے یا نہ لگے۔ سو آپ انتظار کے دوران چن سکتے ہیں کہ آپ کو غمگین ہونا ہے یا خوش۔ آج صبح کی تعلیم زبردست ہے۔ آپ جانتے ہیں ہماری پرانی انسانیت برے خیالات کو جنم دیتی ہے۔ आपको बुरे ख्याल को अपने जहन में लाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको अच्छी बातों का तसव्वुर खास तौर पर करना पड़ेगा। आमीन। अगर आपका वजन ज्यादा है और आप उसे कम करना चाहते हैं तो जाएं अपने लिए जाकर छोटे कपड़े देखें और हर रोज उन्हें देखकर यूं कहें कि मैं तुम्हें बहुत जल्द पहनूंगी। आमीन। ख्वाब देखें, अपने सामने एक मकसद रखें। ठीक है, ख्यालात। जहन का मैदान जंग। मैं बता सकती हूं कि मुझे क्या मिला जब मैंने ये जाना कि मैं अपनी सोच की खुद मालिक हूं, और मुझे बस वही नहीं सोचना जो मेरे जहन में टपक पड़े, बल्कि मैं उस टपकी हुई सोच को अपने जहन से झटक कर किसी अच्छी बात को सोचने के लिए चुन सकती हूं। अब देखें, दूसरा करंथियों 10:4-5, हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचा हम तसव्वुरात और हर ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमा बरदार बना देते हैं। अब देखें, मतलब यह है कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। शैतान आपके जहन में मुख्तलिफ बातों को डालेगा, क्योंकि जहन मैदान जंग है, और ऐसा आपके साथ सारी जिंदगी होता रहेगा। हमारी जिम्मेदारी यह है कि जब भी ऐसी सोच सर उठाए, पाक रूह से कहें कि आपकी मदद करे, ताकि ऐसी सोच को, जिसको मैं बदबूदार सोच कहती हूं, और आप इसे दूर ही से पहचान ले, और तब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको झटकें और उसकी जगह किसी अच्छी सोच को दें। क्योंकि अगर आप अपने जहन को खाली छोड़ देंगे तो फिर वैसी ही बुरी सोच फिर से आ जाएगी, लेकिन अगर आप उसकी जगह किसी और अच्छी सोच को देंगे तो बुराई के लिए जगह बाकी ना रहेगी। और आपको पता है मेरे पसंदीदा कामों में से एक क्या है, और सच कहूं मुझे बैठकर उन चीजों के बारे में सोचना बेहद पसंद है जो मैं लोगों के लिए कर सकती हूं। मेरे ख्याल से ये बहुत मजे की बात है। अब जरा सोचें, आज के दिन मैं किस किस से मिलूंगी और मैं उनके लिए क्या कर सकती हूं। आज मैं किसके लिए बाई से बरकत हूं। ठीक है खुदावंद, आज मैं गौर से सुनूंगी, क्योंकि लोग कहेंगे उन्हें क्या चाहिए, क्या दरकार है, और मैं उन सब की जरूरतें पूरी करना चाहती हूँ। बैठ कर ये ना सोचते रहें कि जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगी, और अगर आप इससे निकल आए तो एक और सोच आपके इंतजार में है, क्या मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे इस रवैये से तंग आ चुकी हूँ। नहीं, आप कहें मेरे अंदर खुदा की तबीयत है, और चाहे तुम मेरे साथ जैसा भी बर्ताव कर लो, मैं यीशु के प्यार में रहते हुए तुमसे प्यार कर सकती हूँ, और मैं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी को कड़वाहट के साथ जहर आलूद नहीं करने दूंगी। जी हाँ, आज आप खुश हैं। आए सीखें रवैया क्या है। बाइबल रोमियो 4:23 में कहती है कि हमें हर रोज नए रवैये की जरूरत है। हर रोज एक नया रवैया। आपके रवैये का ताल्लुक आपकी जात से है। अब सुने, आपका रवैया आपकी जात से मुताल्लिक है, और अगर आप चाहें तो कोई भी उसे गंदा नहीं कर सकता। देखें, अगर हम अपनी कुछ चीजों की जिम्मेदारी खुद उठाएं और हमेशा हालात को इल्जाम ना देते रहें कि अगर मेरे पास अच्छी नौकरी होती, अगर मेरे शौहर का बर्ताव उसके शौहर की तरह अच्छा होता, और ये और वो वगैरह वगैरह, अपने रवैये को बहरहाल अच्छा रखें और शैतान को पागल कर दें। आपको अपनी जात के साथ जीना पड़ेगा। आप कभी अपने आप से पीछा नहीं छुड़ा सकते, एक सेकंड के लिए भी नहीं। सो ये भी हो सकता है कि आप खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ करें। दुरुस्त, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं जो कि बहुत अच्छी है। 92 साल खातून नर्सिंग होम जाने के लिए तैयार थी, हाल ही में उसके शौहर ने वफात पाई थी और उसकी बिनाई बहुत कम थी, वो मजीद अकेले नहीं रह सकती थी। और वो दुबली पतली बासलीका एक अच्छी खातून थी। हर सुबह 8 बजे वो पूरी तरह तैयार होती, बाल बनाती, हल्का सा मेकअप करती। आज वो नर्सिंग होम मुंतकिल हो रही थी क्योंकि उसका 70 साला शौहर हाल ही में इंतकाल कर गया। नर्सिंग होम की लॉबी में कई घंटे तक सब्र से इंतजार करने के बाद उसने एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी जब उसे बताया गया कि उसका कमरा तैयार है। और कमरा दिखाने वाले शख्स ने खातून की वॉकर को एलिवेटर से कमरे की तरफ ले जाते हुए उसके छोटे से कमरे की जाहिरी तफसील बताई और पर्दे लगे हुए बताए। जबरदस्त, उसने इस अंदाज से कहा जैसे उसे नया पपी मिल गया हो। उस शख्स ने हैरान होकर कहा, जरा ठहरे, आप कमरे को बिना देखे कैसे पसंद कर सकती हैं? उस औरत ने जवाब में कहा कि बेशक, मैंने अब तक कुछ नहीं देखा, लेकिन खुशी एक ऐसी चीज है जिसे आप वक्त से पहले अपने लिए तय करते हैं। कमरा मुझे पसंद आएगा या नहीं, इसका ताल्लुक उसके फर्नीचर की तरतीब से नहीं बल्कि मेरे जहन में आने वाली तरतीब से है। सुनिए, अपने जहन को तरतीब में लाएं अभी कि आप बुढ़ापे में खड़ूस या बदमिजाज नहीं होंगे। मैं वक्त के साथ साथ खुश मिजाज होना चाहती हूं। पिछले हफ्ते मैं बहुत हंसी और मेरे बच्चे भी हंसे। मैं अपने खाने पर दुआ कर रही थी और मैंने कहा, शुक्रिया जॉयस इस खाने के लिए जो मुझे मिला। मेरे बेटे ने कहा, अगर आप अपने से दुआ कर रही हैं तो आपको काउंसलिंग की जरूरत है। खुद पर हंसे, अपनी हर छोटी बड़ी गलती पर पागल मत हो। आमीन। मैं हर काम को करने के लिए अपने जहन में तरतीब देती हूं। मैं हर सुबह जब जागती हूं तो ये एक फैसला है जो करती हूं, मेरे पास मेरी मर्जी है। मैं दिन को बिस्तर में पड़े रहकर अपनी मुश्किलात को गिनते हुए गुजार सकती हूं कि मेरे बदन के कितने आजा हैं जो काम नहीं करते, या मैं बिस्तर से निकलकर उनके लिए शुक्रगुजारी कर सकती हूं जो करते हैं। हर दिन एक नेमत है और जब तक मेरी आंखें खुली हैं, मैं हर नए दिन पर ध्यान करूंगी और उन तमाम खूबसूरत यादों पर जिन्हें मैंने जिंदगी के इस वक्त के लिए संभाल के रखा था, मुझे बहुत प्यारी हैं। बहुत 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 प्यारी। डेव और मैं अक्सर मिनिस्ट्री के इब्तदाई दिनों को याद करते हैं कि हमने कितनी मेहनत की और छोटी छोटी वो तमाम मीटिंग्स जो हम तरतीब देते थे, ओ मेरे खुदा, और इस दिन के आने की उम्मीद और ख्वाब देखा करते। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं खुदा पर भरोसा किया करती थी कि आज 100 लोग आएंगे और इस तरह सालों बीत गए और आप जानते हैं कि कभी कभी एक ख्वाब का पीछा करना मुश्किल होता है। और मैंने करोड़ों मर्तबा चाहा कि मैं हार मान जाऊं और यही शैतान चाहता है कि आप करें। मैं आपको बताऊं, हार मानने के लिए बिल्कुल हौसला नहीं चाहिए। कोई भी ये कर सकता है, लेकिन सिर्फ मजबूत लोग अपने ख्वाबों से तब भी लिपटे रहते हैं जब कुछ ना हो। कोई वजह नहीं कि आप उस दिन के आने की राह देखें सिवाय उस बात की जो खुदा ने आपके दिल में डाली है। आमीन। अब एक और बात जो हमारे दिल के अंदर चलती रहती है, जो कि मेरी जाती राय के मुताबिक बड़ी अहम बातों में से एक है, मकासिद। सुने, खुदा को इससे इतना सरोकार नहीं कि हम क्या करते हैं, जितना कि इससे कि हम क्यों करते हैं। और मैं यहां कहना चाहती हूं कि चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन अगर आप उसे गलत मकसद से करते हैं तो आप जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। सिर्फ भले मकसद से किए गए काम का अजर मिलेगा या उससे खुशी मिलेगी। मत्ती 6:1-7, जी मैंने कहा 7 आयत। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। इसका मतलब ये नहीं कि लोग आपको अच्छे काम करते हुए नहीं देख सकते, बल्कि ये है कि अगर आप इसी सोच के साथ करते हैं कि लोग आपको देखें, तो फिर आपके लिए कुछ अजर नहीं, आप बदले में कुछ नहीं पाते। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। इस बात का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि जब हम किसी के लिए कोई बहुत भलाई का काम भी करते हैं तो भी हमें बैठकर ये सोचने की इजाजत नहीं कि हम कितने अच्छे हैं। आमीन। मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, प्यार पर्दे में छुपा रहता है जब तक कि उसकी जरूरत ना पड़े, फिर वो बाहर आता है और अपना काम करता है और वापस पर्दे के पीछे चला जाता है और फिर अगले मौके का इंतजार करता है। जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाना हाथ करता है उसे बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आप जानते हैं कितना मुश्किल है कि आप किसी के लिए बहुत अच्छा करें और खुदा और आपके सिवा किसी और को खबर ना हो। पता है क्यों? क्योंकि बदन तारीफ का भूखा है। इसको जरा एक हल्की सी थपकी, जरा सी मकबूलियत चाहिए। मैंने पहले भी कहानी सुनाई है लेकिन इसे काफी देर गुजर गई है, सो अगर आपको दोबारा सुननी पड़े तो आपको इसे सुनने की जरूरत है। गालबन इस बात को 30 साल हो चुके हैं और मुझे खुशी है कि ये कह सकती हूं कि ये कल की बात नहीं है। क्या किसी को वो जमाना याद है, उस दौर में जब वो बड़ी राइन स्टोन जीसस पिंस बहुत मकबूल थी? आप में से कितने लोगों के पास कभी वो राइन स्टोन जीसस पिन रही है? क्या यहां सिर्फ हम 3 लोग ही इतने पुराने हैं? खुदावन मेरी मदद कर। बहरहाल वो एक बड़ी चीज हुआ करती थी और एक दिन मैं नेल शॉप में अपने नाखूनों पर कुछ काम करवा रही थी और वहां पर एक खातून थी जो नाखूनों पर कुछ काम करवा रही थी और पेशे से वो नर्स थी, और उसने बताया कि लोगों को इस हालत में देखना और उनसे खुदा की बात ना कर पाना कितना मुश्किल है, क्योंकि यह अस्पताल की पॉलिसी के खिलाफ था। मेरे दिल में एक बात खुदा की तरफ से आई, ये चमकीली पिन जो तूने पहन रखी है इसको दे और उसे बता कि वो इसे अगर अपने यूनिफॉर्म के ऊपर पहनेगी तो जब वो मरीजों के नजदीक जाएगी तो वो यीशु के नाम को देखेंगे और इससे बरकत और मदद पाएंगे। और मैंने महसूस किया कि मुझे ये पोशीदगी से करना चाहिए और मैं नहीं जानती थी कि कैसे करूंगी, लेकिन उस लड़की ने जो मेरा काम कर रही थी, जरा सुने, उस लड़की ने कहा जो मेरा काम कर रही थी, जॉइस मेरे पास कुछ चीजें खत्म हो गई हैं जो मुझे चाहिए, मैं 7 वाले सप्लाई हाउस से लेने जा रही हूं। सो खुदा ने मेरे लिए एक दरवाजा खोला कि मैं किसी की नजर में ना आऊं। उसने रास्ता निकाला कि सारा जलाल उसे मिले। सो जब वो लड़की गई, मैं वहां बैठी खुद से कुश्ती कर रही थी कि अब कर दूं या लड़की के आने का इंतजार करूं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने सही काम किया लेकिन सही तौर से नहीं किया। मैं वहां बैठी रही और इंतजार किया और मैंने दिल में यह भी कहा कि शायद मेरी फराग दिली देखकर वो बरकत पाए और शायद ये उसके लिए एक अच्छी मिसाल हो। और फिर जब वो वापस आई और जब मेरा काम खत्म हुआ तो मैंने पिन ली और उस लड़की के पास लेकर गई और कहा, मैं चाहती हूं कि आप इसे ले लें, मैंने महसूस किया है कि खुदा यही चाहता है कि अगर आप इसे अपने यूनिफॉर्म पर पहनेंगी और ये और वो, तो जो मैं चाहती थी वही हुआ। ओ ये तो बहुत प्यारी है, आप कितनी अच्छी हैं, ये तो बहुत प्यारी है। और जब मैं वहां से निकली तो तो अपनी कार की तरफ जाते हुए मैंने खुदावन को सरगोशी करते हुए सुना कि उम्मीद है मजा आया होगा क्योंकि तेरा अजर बस इतना ही है। क्या यहां किसी और ने कभी कुछ ऐसा किया है? यकीनन, खुदा का शुक्र है यह 35 साल पुरानी बात है। मकासिद बेहद अहम है और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिंद ना बनो क्योंकि वो इबादत खानों में बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। देखे मैं सच कहूंगी, जब मैं मीटिंग्स में इज्तिमाई तौर पर भी दुआ करती हूं आप सब लोगों के लिए, तो मैंने सीखा कि मुझे ये फिक्र नहीं करनी कि आपको मेरे अल्फाज पसंद आएंगे या नहीं, बल्कि अपनी आंखें यीशु पर लगानी है और सुनना है कि वो अल्फाज कौन से हैं जो वो चाहता है कि मैं कहूं, और यहां खड़ी होकर आपको मुतासिर करने की कोशिश ना करूं क्योंकि मैं अपना अजर खोना नहीं चाहती। जी हाँ, आप में से कितने हैं जो अपना अजर खोना नहीं चाहते, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बहुत से लोग सही काम करते हैं लेकिन वो उन्हें गलत नीयत से करते हैं, और अगर आप एक सही काम गलत नीयत से करते हैं तो आपको उस काम का लुत्फ नहीं आएगा।